कौन सा जीवन सबको प्रिय लगता है और बाबा को भी बहुत प्यारा लगता है, जिस जीवन में सद्गुणों का श्रृंगार हो, शक्तियों से मन भरपूर हो। ये दोनों हमारे बहुत बड़े खजाने हैं। जिसके पास गुणों का खजाना है वो सचमुच रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, बहुत धनवान है। और कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो या सुंदर हो लेकिन गुणवान ना हो तो वो किसी को प्रिय नहीं लगते। हमें सद्गुणों से अपना श्रृंगार करना है। पहला गुण है जो बाबा को बहुत प्यारा है, संतुष्टता, ठीक है। दूसरा गुण है सुख देना। बाबा बोलते आते थे साकार में भी, जो दूसरों को सुख देते हैं वो बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। हमको बाप की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, दुआएं मिलती हैं। तीसरा गुण है सहनशील होना। सहनशील व्यक्ति हर जगह सफल होता है। किसी के साथ रहना भी उसको भारी नहीं लगता। वो ये नहीं सोचता दूसरे बदले, वो ये नहीं सोचता ये ऐसे क्यों हैं, मैं इनके साथ नहीं रह सकती, नहीं रह सकता। उसको किसी के साथ भी जीवन बिताना सहज लगता है। और कौन सा गुण है बोलो? मधुर बोल और धैर्य चित्त होना रहती है ये। और गुण तो सारे ही हैं। निरहंकारी, अहंकार विष के समान। योगियों के जीवन में क्रोध और अहंकार दो बड़े शत्रु। जो निरहंकारी है वही ईश्वरीय शक्तियों से संबंध है, स्पिरिचुअल है, रूहानियत उसके पास है। और एक गुण को लेंगे सद्भावनाएं। जिसका मन दूसरों के लिए प्रेम और सद्भावनाओं से भरा है उसके जीवन की यात्रा बहुत सरल हो जाती है, सहज लगता है सब कुछ। पहले लेंगे सहनशीलता। मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा, यूं तो एक एक पर एक एक क्लास हो सकती है। किसने हमें आज्ञा दी है कि सहन करो? स्वयं बाबा ने, भगवान ने। हमें इसलिए भी सहन करना है कि ये ईश्वरीय आज्ञा है। इसमें बहुत बल रहेगा, इससे हमारी शक्तियां बढ़ेंगी। सहनशील होने से सहन शक्ति आ जाएगी और हम विभिन्न परिस्थितियों को आराम से सहन कर सकेंगे। बड़ी बीमारी भी आ गई, हाय हाय नहीं करेंगे। किसी ने कटु वचन बोल दिए, परेशान नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा अभ्यास, जिसको अपनी सहन शक्ति को बढ़ाना है सवेरे उठते ही प्रैक्टिस करेंगे, मैं सहनशीलता की देवी हूं। भाई लोग भी ले लें अपना सब। सहनशीलता मेरा श्रृंगार है। नेचुरल सहनशील हैं हम। जो सहनशील होता है, जो रियल में सहनशील है, उसे सहन करने के बाद ऐसा लगता नहीं कि हमने बहुत सहन किया है। वो वर्णन करते रहे, तुम्हें क्या पता मैंने कितना सहन किया है, बोलते हैं ना। बाबा का बनकर बहुत सहन करना पड़ता है, ये सहनशीलता नहीं है। सहज भाव से सहन करना, ठीक है ना। अपनी सहनशीलता का आनंद लेना, सहन करने वाले को ये पता ही न चले कि वो सहन कर रहे हैं। जैसे बहुत गरीब लोग सड़कों पे रह रहे ठंड में, बच्चों के पास ज्यादा कपड़े भी नहीं, कोई तो नंगे ही घूम रहे होंगे, उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो सर्दी को सहन कर रहे हैं। और जो बिल्कुल अंदर रहते हैं, हीटर जला हुआ है, खूब गर्म कपड़े पहने हुए हैं, जरा सा बाहर निकले बहुत ठंड है, सहन नहीं होती, सर्दी हो गई, नाक बहने लगा मेरा तो। हमारी सहनशीलता ऐसी हो कि हमें पता भी नहीं चले हम सहन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमें बहुत बढ़ाना है, सर्दी गर्मी सुख दुख लाभ हानि निंदा स्तुति सबको सहन करना होता है। आज तक भी इतिहास में जिन्होंने राज्य स्थापित किए, भारत में बहुत बार ऐसी स्थिति आई जब किसी न किसी को राज्य स्थापित करना पड़ा, विदेशियों ने हथियारी सत्ता भारत की, किसी न किसी को भारत से उनको भगाना पड़ा और उनको बहुत सहन करना पड़ा, तैयार करना पड़ा, जनता को अपनी ओर करना पड़ा, बार बार अरेस्ट किया गया, उन्हें कस दिए गए, सहन किया, लेकिन लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जो मनुष्य सहन करने के कारण लक्ष्य को छोड़ देते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, और जिनको अपना लक्ष्य दिखाई देता है उनके लिए सहन करना खेल होता है। इस मंजिल पर पहुंचना है तो सहन करना पड़ेगा। एवरेस्ट की चोटी पे यात्री चढ़ते हैं, जितना ऊंचे जाएंगे उतने ही तूफान ज्यादा लगेंगे, जो चढ़ ही नहीं रहा हो उसे तूफान क्यों लगेंगे। जो कुछ कर रहा है उसे ही सहन करना पड़ता है, जो कुछ नहीं कर रहा है उसे क्यों सहन करना होगा। जो कुछ कर रहा है उसे ज्ञानी को भी सहन करना पड़ेगा, अपमान को भी सहन करना पड़ेगा। जो कुछ नहीं कर रहा उसकी कोई ज्ञानी क्यों करेगा। एक व्यक्ति घर में है, मौज से सारा दिन टीवी देखता है, आनंद से जीवन बिता रहा है, उसको कोई कुछ कहेगा कि इसने ये किया, इसको ये नहीं करना चाहिए था, कहेगा कोई नहीं। तो जो सेवा के फील्ड में है उन्हें अपने को तैयार करना है सुनने के लिए। सुनने की शक्ति और सहन करने की शक्ति किसी आत्मा को महान बना देती है। सोचते होंगे आप, बाबा को भी कुछ सहन करना पड़ा था या नहीं? बाबा को बहुत कुछ सहन करना पड़ा, लेकिन बाबा के चेहरे से किसी ने ऐसा नहीं देखा कि वो कुछ सहन कर रहे हैं। सबसे बड़ी सहन करनी पड़ी उनकी, उनको ग्रानी और गालियां। अकेले ही तो थे वो यज्ञ में शुरू में, जो बड़े थे, बाकी तो छोटे छोटे बच्चे आए थे। जो 5-10 बड़े भी आए थे वो भी मैं ज्ञान वाले तो नहीं थे, आए थे बस प्यार में। तो अकेला ही एक बड़े कार्य का संचालन करते हुए बाबा, शिप का कैप्टेन, इस ब्राह्मण जहाज का कैप्टेन, जिसको सारी लहरों को पार करना था लेकिन आराम से किया। सर्वशक्तिवान का साथ है, जिसको भगवान साथ दे रहा हो उसको कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा। बेगरी पार्ट आया, खाने को कुछ नहीं था, बाबा को भी खाने को कुछ नहीं था, केवल बच्चों को नहीं बाबा को भी कुछ नहीं था। आप उस समय की कहानी सुनो तो दिल दहल जाएगा। ब्रह्मा भाग्य विधाता, उसको खाने को नहीं मिल रहा है, सोचने की बात है। जिसके संकल्पों में शक्ति है सिद्धि, जो वरदान प्राप्त है उसको कठिनाइयों से जीवन गुजारना पड़ रहा है। बीमार हो गए 70 लोगों को, लूज मोशन हो गया, दवाई है ही नहीं। शिव बाबा का मैसेज आ गया, छाछ और बाजरे का डोडा खिलाओ सबको। सब परेशान हो गए, एक लूज मोशन, दूसरा छाछ और बाजरे का डोडा, खाते ही ठीक हो गए। ये किसी को पता ही नहीं था, खाते ही ठीक हो गए। दवाई भी शिव बाबा भेजा करता था ऊपर से, पहले हमारे लिए भेजी थी कई बार, फॉर्मूला बताता था ये कर दो। तो हमें सहन करना है, करना पड़ता है ना सबको, भाइयों को भी सुनना पड़ता होगा बहुत कुछ, सुनते हैं या परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं लोग बहुत बोलते हैं इससे तो न जाना अच्छा है। क्या विचार भाइयों का, उत्तर दो ना, कुछ नहीं बोलते, ये तो बड़ा भाग्य है। लोग जितना बोलें उतना आप ज्यादा आओ, हो सकता है लोग जितना बोलें उतना ज्यादा हो। हमारी गीता बहन एक कहानी सुनाती अपने गांव की, एक माता को उसका पति बहुत रोकता था गांव में, जाना नहीं है सेंटर में, और माता की लगन मैं जाऊंगी। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए, देखो आज कैसे जाती है, वो अंदर बैठा था कि तो जाएगी नहीं। उसने चुपचाप वो लकड़ी बांसों की सीढ़ी होती है ना लगाई, छत पे चढ़ गई, सीढ़ी खींची, दूसरे के घर उतारी, उतर के चली गई। आधे घंटे में उसने देखा कुछ चूचा नहीं हो रही है, क्या बात है, देखा वो तो है ही नहीं यहाँ, सीढ़ी उसने देखी नहीं, सीढ़ी भी गायब और वो भी गायब। आई, डंडा लिए खड़ा था, आते ही गर्मा गर्म हो रहा, इस माता को कमर में दर्द बहुत रहता था, आते ही उसको कमर में एक डंडा मारा जोर से, और उसकी जो कमर दर्द थी वो ठीक हो गई। सच्ची घटना है, वो तो सीधी चलने लगी ठीक ठाक। कहा एक और मार दो, तो कहा क्यों ये हंस रही है, तुम पागल है क्या है, मैंने इतने जोर से डंडा मारा कि मेरा मन का ठीक हो गया जो खिसका हुआ था। और वो इन हाथ जोड़े, देवी तुम जाओ जहां शेष लगन है वहां कोई विघ्न उसको रोक नहीं सकता। तो हमें सहनशील बनना है, दूसरा हमें श्रृंगार करना है संतुष्टता से। संतोष मणिया बाबा को बहुत प्रिय हैं, बाबा के दो तीन महावाक्य हैं, संतुष्ट आत्मा का प्रकाश सारे संसार में फैलता है, संतुष्ट आत्मा बहुत शक्तिशाली बन जाती है। और बाबा ने हम सबको कहा था कभी मधुबन निवासियों को छोटे ग्रुप में मिलते हुए, संतुष्ट बन कर रहो, तुम्हारी सफलता का मार्ग खुलता ही जाएगा। कोई सेवा न मिले सोचो नहीं, संतुष्ट रहो, आप ही आगे बढ़ते जाओगे। हमने सीखा ये सब बाबा से, संतुष्ट जिन परिस्थितियों में हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो व्यवहार मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है, सब में संतुष्ट। न बहुत सारी इच्छाएं न बहुत सारी कामनाएं, दोनों को कम करते चलें तो हम संतुष्ट मणि बन जाएंगे। और संतुष्ट मणि बनने से हमारा चित्त बहुत शांत रहने लगता है। सबसे बड़ा फायदा ये है, जो संतुष्ट नहीं रहते उनका मन भटकता बहुत है, संगठनों में संतुष्टता की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत हो जाती हैं, कामनाएं। ये हमारा ब्राह्मणों का संगठन है, यहाँ हर व्यक्ति चाहेगा, सभी ज्ञानी आत्माएं हैं, सब अच्छा व्यवहार करें, पर कोई नहीं करता तो संकल्प चलेगा। ये भी तो मुरली सुन रहे थे आज, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता इनमें तो शिकायत चल जाएगी। तो जहां मन में दूसरों के लिए शिकायतें हैं वहां क्या होगा, मैं एक बात कहा करता हूं अपने लोगों को। हमारे यहां एक गीत है, खुशियों भरी जिंदगानी हमारी, कईयों ने इस गीत को बदल दिया है, शिकायतें भरी जिंदगानी हमारी, शिकायतें यहां ऐसा हो रहा है, वहां ऐसा हो रहा है, देखो ये ऐसा कर रहे हैं, जिन चीजों से उनका कोई लेना देना नहीं उनके भी शिकायतें, ये सुधर जाए तो ठीक हो जाए, ये ऐसा कर ले तो अच्छा हो जाए। पर वो कर क्यों ले, उनकी तो अपनी बुद्धि है, अपनी मेंटेलिटी है, अपनी विचारधाराएं हैं, सबको अपने अपने ढंग से बदलना है, कर्म करना है। संतुष्ट ये बहुत अच्छी चीज जो मैंने भट्टी में आपको थोड़े में सुनाई थी, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। तो हम सोचते हैं ना ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो हो रहा है सब जगह, परिवार में, यज्ञ में, आपके लोगों के काम धंधों में, आपके व्यक्तिगत जीवन में, जो कुछ हो रहा है वही सत्य है। इस पे सभी को काम करना है, ये साक्षी भाव है, खेल चल रहा है सुंदर। नहीं तो बाबा परेशान ना हो जाए ऊपर बैठा, ये क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे सब, मैंने यज्ञ रच के इनको दिया था, इन्होंने सब बिगाड़ दिया। बहुत कुछ सोच सकता है वो, लेकिन वो कुछ भी नहीं सोचता। जो हो रहा है वही सत्य है। शांत, संतुष्ट, नो कंप्लेंट। जिसको अपना जीवन सुंदर बनाना है, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट्स स्लोगन बना ले अपना। न क्वेश्चंस की उधेड़ बुन में ये क्यों हो रहा है, न शिकायतें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों से मुक्त। बाबा हमेशा कहते हैं क्यों का चिन्ह कैसा है, टेढ़ा। फुल स्टॉप तो बिंदु ही है और हिंदी में डंडा है बस, सीधा साधा, और क्वेश्चन टेढ़ा बना देता है सबको। हमें संतुष्ट मनिया बनना है, ठीक है। भगवान मिल गया, हमारे दिल से आवाज निकले, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए। निकलेगी आवाज, बाबा आपको पाकर हम संतुष्ट हुए, आपका ज्ञान पाकर भरपूर हो गए, नो क्वेश्चन, सत्य की खोज पूरी हो गई। हो गई या नहीं? आप में से कोई अगर सत्य की खोज में रहा हो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उन्हें पता है सत्य को ढूंढने के लिए हम सब ने क्या क्या किया था। हमने किया वो, क्योंकि सत्य पर हम आए थे तो सत्य की तलाश भी हमें थी। बिना सत्य के जो असत्य मार्ग हैं उन पर हम तृप्त हो ही नहीं रहे थे, क्योंकि हमने भरा है वो सब। तो बाबा ने आकर सब कुछ दिया, हम संतुष्ट हुए। छोटे मोटे दुख, छोटी बातें हमें असंतुष्ट न करें, ऐसा अपना विचारधारा, अपना दृष्टिकोण ऊंचा बना दो। छोटे विचारों से परे सुंदर विचारों में रमन करें। छोटे विचार मनुष्य को असंतुष्ट करते हैं, छोटी इच्छाएं उसको असंतुष्ट करती हैं। और कईयों की आदत होती है क्या, असंतुष्ट रहने की। सब कुछ दे दो फिर भी परेशान। विदेशों के आए हुए लोग ये बात बहुत कहते हैं कि आपके भारत के बच्चे बड़े खुश नजर आते हैं, देखते हैं ना बच्चों को। हमारे देश में बच्चे चिड़चिड़े रहते हैं, कुछ भी दे दो परेशान, जैसे अशांत हैं। तो संतुष्ट रहना अपने हाथ में, हमें खुश रहना है। बहुत खुश रहने को अपनी नेचर बनाएंगे। सभी लोग इस संसार में खुश नहीं रहते। जो धनवान हैं उनकी और चिंताएं हैं, उनकी चिंता भी बड़ी, उनके मन में कंपटीशन भी बड़ा। अरे फलाने अंबानी के पास इतने हजार करोड़ हैं, मेरे पास थोड़े से कम रह गए, उससे ज्यादा करने हैं। तो जो उसके पास अथाह संपदा है उसका सुख नहीं है, जो कंपैरिजन है ये मनुष्य को दुखी कर रहा है। कहीं कंपैरिजन, कहीं कंपटीशन, कहीं ईर्ष्या द्वेष, कहीं नफरत मनुष्य को खुश नहीं रहने देता। जो कुछ उसे प्राप्त है उसकी खुशी रहे, उससे आनंदित रहें, ये हमें अपनी नेचर बनानी है। नो कंपैरिजन। जब देखो एक छोटी सी बात बताऊं, हमारे देखते देखते घरों में साइकिलें नहीं होती थी। हमारे गांव में पहले पहले दो साइकिलें आई, सब बच्चे देखने जाते थे, वे दो पहियों पे चलती कैसे, गिरती क्यों नहीं, बड़ा आश्चर्य। साइकिल, और जो साइकिल पे चलते थे बड़ा नशा उन्हें, हमारे पास साइकिल है। फिर स्कूटर आए, वो आई मोटरसाइकिल, फिट फिट कहते थे, आवाज बहुत करती थी, किसी किसी के पास आती थी, कभी कभी देखने को मिलती थी, हो, जिसके पास वो होगी वो तो राजा। फिर कारें आ गई, लोगों ने माल एम्बेसडर ही होती थी, जिसके पास कार आ गई वो कार वाला। अगर सेंटर में एक कार वाला आता है तो बाहर कार खड़ी, बड़े आनंदित होते थे लोग, हमारे यहां भी कोई कार वाला आता है। अब वो कार बेकार हुई, मारुति आई, ये आई, वो आई, अब देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां। अगर किसी के घर में अल्टो हो और पड़ोसी के घर में सुंदर गाड़ी खड़ी हो तो अपनी अल्टो का सुख समाप्त। पहले अल्टो में आनंदित थे, मारुति में आनंदित थे, अब पड़ोसी के पास क्योंकि दूसरी सुंदर सुंदर गाड़ियां खड़ी हैं, दो खड़ी हैं, संकल्प उठता है इनके पास अच्छी, हमारे पास नहीं, लोग क्या कहेंगे। संतुष्ट और खुशी समाप्त। ये कंपेरिजन खुशी को नष्ट करता है, चाहे भोजन हो, जैसे आपके यहाँ भी हिंदी में कहावत होगी, दूसरे की थाली में खीर सबको अच्छी लगती है, अपनी में भले ही बहुत हो लगेगा उसके में ज्यादा अच्छी लग रही है, भेदभाव कर दिया है इन्होंने, खुशी खत्म। खुश रहने को अपनी आदत बनाएं, जो खुश है वो बहुत भाग्यवान है। चेक कर लें कौन सी बातें, कौन से संकल्प, कौन सी प्राप्ति हमें खुश नहीं रहने देती। एक छोटा सा उदाहरण, सोमनाथ मंदिर देखने हम गए तो घूम रहे थे, प्यास लगी तो भाई जो घुमा रहा था हमें एक दुकान पे ले गया, आठ दस दुकानें थी वहां जंगल में खोखे लकड़ियों के, तो एक व्यक्ति ये सब चीजें बेच रहा था, पानी, दूध, दही, कोल्ड ड्रिंक्स। तो देखो उसकी कहानी सुनो, किसी ने मांगा भाई मुझे लिमका दो, अब वो छोटी सी दुकान थी, उसने गीत गाया, डांस किया, लिमके की बोतल उठाई, लिमके की बोतल को तीन बार ऊपर उछाला और गीत गाया और पकड़ा, ढक्कन खोला, फिर गीत गाया, दिया, डांस करते हुए दिया। दूसरे ने कुछ और मांगा, उसने ऐसे ही किया, तीसरे ने कुछ और मांगा, ऐसे ही किया। हमने उससे पूछा, बड़े खुश रहते हो आप तो भाई, छोटा ही था, कपड़े भी सिंपल हम जैसे पहने हुए थे। उसने कहा, मैंने सोच के रखा है मुझे तो खुश रहना है, पैसा मिले या न मिले मैं तो खुश रहता हूँ, सारा दिन डांस करता हूँ, जो आता है उसको खुशी मिलती है, इसलिए उसकी दुकान में ग्राहक भी ज्यादा आ रहे थे। खुशी आकर्षित करती है ना सबको। हम पांच थे, हम एक दूसरे को देखने लगे, क्यों देखने लगे, ये साधारण सा व्यक्ति खुश रहता है, क्या हम भगवान को पाकर खुश रहते हैं। सोचना है, जिनको सबसे बड़े खजाने मिल गए हो, भगवान खुशी की सौगात लेकर आया हो, स्वर्ग हथेली पर ले आया हो, भविष्य की चिंता नहीं, उन्हें कितना खुश होना चाहिए। हम अपने से बात करें, कहीं आदत तो नहीं पड़ गई है परेशान रहने की, कहीं आदत तो नहीं पड़ गई है बहुत सोचने की। बाबा ने ये सिखाया है, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उन्हें बड़ा कर देते हो। ज्यादा सोचने की आदत दुखों का सबसे बड़ा कारण है, आजकल बहुत लोग सोच रहे हैं, इसलिए मेंटल इफेक्ट्स बहुत ऊपर बुरे आ रहे हैं। सबको सावधान होना है, बुरा असर आ रहा है लोगों के मन पर। मुझे 10-20 लोग तो मिल ही जाते हैं जहां भी जाता हूं, जो कहते हैं हमारे पापा को बहुत बिगड़ता जा रहा है मन, सारा दिन सोचते रहते हैं, चेहरा बिगड़ा बिगड़ा रहता है, अपसेट नजर आते हैं, उनको भी समझ में नहीं आता मुझे हो क्या रहा है, पर हो रहा है। इसलिए इस आदत को चेंज करना है, बहुत सोचने की आदत परेशानियों में डाल सकती है, बीमारियों को जन्म देगी, सोचना नहीं है। बाबा ने तो कह दिया, देखो सबसे सुंदर बात है, मैंने अपनी डायरी में नोट करके रख दी थी, जब ये महावाक्य सुना तुम तो मेरी याद में मगन रहो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा। मैंने रखी अपनी बात सामने, रोज पढ़ता था। हम इतना समर्पित कर दे अपने को बाबा के सामने कि हमारे लिए सोचे भी वही, हम क्यों सोचें? जैसे आपके बच्चे कुछ सोचते हैं क्या ज्यादा? उन्हें तो पढ़ना है, अब पापा जाने कहां से पैसा लाएगा, कहां से खिलाएगा, कपड़े मकान कहां से करेगा, ये इनका काम है। होता है या नहीं सबके पास? हम सब भी जब बचपन में थे कुछ सोचते थे, पढ़ना लिखना है बस, ज्यादा खेल कूद और क्या, किसी से लड़ाई झगड़ी हो गई बच्चों की तो उस पर सोच रहे हैं वो भी थोड़ी देर। हम अपने को इतना समर्पित कर दें कि हमारी चिंता स्वयं भगवान करे, हमारी केयर करे, वो हमारी संभाल करे, कर सकता है या नहीं? क्या सोचती है माता जी? सोच रही है ये काम हो जाएगा क्या? माता जी बहुत सोच रही हैं, सोच रही है ना, ठंड ज्यादा लग रही है आपको तो नहीं। मैं माताओं को, कई माताओं को देखकर मुझे बड़ी दया आती है। उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे संसार को चलाने का बोझ इनके सिर पर है। मैं अंतिम में कहा करता हूँ, माता जी आपने शिव बाबा का सारा काम ले लिया, वो क्या करेगा ऊपर? संसार को उसको चलाने दो, जरा हल्के हो जाओ सब हल्के, ये जो बोझ रख लिया है सिर पर उतार दो। जिनकी चिंता स्वयं भगवान करता हो वो अपनी चिंता क्यों करें? दे दो अपनी जीवन नैया, जीवन की बाग दो उसके हाथों में और देखो आनंद ही आनंद। निकालते हुए लहरों से ले जाएगा मंजिल पर, न डूबने देगा न पानी भरने देगा नाव में, आनंदित रहेंगे। लेकिन जहां हम समर्पित नहीं करते मैं वहां ये सब बोझ है। खुश रहना है, रोज सवेरे बाबा खुशी की खुराक खिलाता है हमें, मुरली खाते हैं या नहीं? रोज खाते हैं सभी, जो नहीं खाते उन्हें खाना चाहिए, ये खुराक बहुत सुंदर है। जैसे माताओं को पता हो, छोटे बच्चों को शहद चटा दिया जाता था, थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक हो जाते थे, फ्रेश ब्रेन का विकास। बाबा भी रोज अमृत पिला देता है सवेरे सवेरे, किसको पीना है, इसका सुख लेना है मुरली का। केवल मुरली सुन ली, नोट कर ली, इतना नहीं, मुरली सुख दे, लगे आज भगवान ने हमसे बातें की। जैसे किसी बड़े आदमी से हम बात कर लें तो सारा दिन खुशियों में बिता देते हैं, भगवान ने बात की रोज करता है वो मुरली के माध्यम से। इस खुशी को हम अपने जीवन में भरते चलें। निरहंकारिता बहुत सुंदर बात है सबके जीवन में। झगड़ों की जड़ क्या है? अहंकार। क्रोध की जड़ भी अहंकार। बहुत परिवार ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर पति पत्नी दोनों में अभिमान बहुत होता है, मुश्किलात होती है। मेरे पास एक पंजाब का युगल आया, सरदार जी थे, 50 साल की ज्यादा आयु हो गई थी, दोनों ही प्रोफेसर थे, दोनों ने ही PhD की हुई थी, दोनों ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, सरदार जी फिजिक्स के, माता जी इकोनॉमिक्स की। दोनों में बहुत लड़ाई थी, शिविर में आ गए हमारे यहाँ। मैंने ऐसे ही पूछ लिया सरदार जी से, अच्छा है जीवन सुंदर चल रहा है? बोलने लगा, कहाँ सुंदर भाई, ऐसा बोले कि मैंने पूछा क्या कठिनाई हो गई, आप तो प्रोफेसर हो, सैलरी बहुत मिलती है। कहा मेरी मिसेज मुझे बहुत तंग करती है, उसने कोई सुख नहीं दिया जिंदगी में मुझे। मैंने कहा उसको मुझसे मिला देना, भेज दिया उसने, टीचर बहन ले आई, वो भी प्रोफेसर इकोनॉमिक्स की हेड ऑफ डिपार्टमेंट, 50 साल के लगभग। मैंने कहा क्यों बहन जी, सुखी तो हो? कहाँ सुख भाई, हमारे तो भाग्य में ही नहीं, सरदार जी ने तंग करके रखा है। ये तो ऐसा अहंकारी है कि इसके साथ रह के तुम्हें दुखी हो गई, भगवान को कहती मेरे क्या कर्म फूटे थे, ऐसा पति दिलाया, अनेक बातें उसने सुनाई। मैंने दोनों को फिर अलग अलग बात की, दोनों ने एक दूसरे की बुराई की। फिर मैंने पूछा एक एक से, इसमें गुण भी है कोई? अब उनके अंदर की चेतना जगी, हाँ गुण तो हैं। बहन जी ने सरदार जी के गुण गिनाए, उसने पत्नी के गुण गिनाए। तब तक एक दिन बीत चुका था शिविर का, उनका मन थोड़ा रिलैक्स हो चुका था। दूसरे दिन मैंने जब दोनों को बुलाया तो कहा, भाई हमारी समझ में आ गया है, हमारी PhD टकरा रही है। टकराता है मनुष्य का अहम, कोई अपने को कम नहीं समझता, झुकाना नहीं चाहता। तुम शेर तो मैं सवा शेर, तुम एक कहोगे मैं दो कहूंगी, ये झगड़ों की जड़ है। जो मनुष्य अपने अहंकार को पहचान ले, जिसको रियलाइज हो जाए ये अभिमान है, अभिमान मनुष्य के जीवन की सुंदरता नहीं है, कटुता है, कांटे हैं, ये विषैला विष है ये मनुष्य के पास, वो इससे मुक्त हो जाते हैं। सभी पुरुषार्थियों को बहुत ध्यान देना है, हम अपने मैंपन को छोड़ते चलें। सूक्ष्म रूप से मैंपन की पहचान सद्विवेक की पहचान है। पहचान ले कहां मैं काम कर रहा है, मैं कमाता हूं या मैं बड़ा हूं या मैं टैलेंटेड हूं, मेरे में ये योग्यताएं हैं, मैंने ये किया है, मैं ये कर सकती हूं, ये भी सोचना ठीक। पर तुम कुछ नहीं हो, तुम तो बेकार हो, मैं ही बुद्धिमान हूं, तुमको तो बुद्धि है ही नहीं, ये सोचना और खतरनाक। एक तो मैंपन, दूसरा दूसरे के लिए ऐसी दृष्टि, इससे अपने को मुक्त करना है। तो बुद्धिमान हम होंगे लेकिन दूसरे के पास भी बुद्धि है, ऐसी दृष्टि। हमें कोई योग्यता हो सकती है पर दूसरों में भी है, और अगर हमें योग्यता है, अगर हम बुद्धिमान हैं, तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप होगा हम दूसरों को भी बुद्धिमान बनाएं, हम दूसरों में भी योग्यता भरें, अन्यथा वो मैंपन अहंकार का रूप लेगी। तो अपने को नम्र बनाना है, और ये याद कर लें, सुने सभी, संगम युग पर इस सुंदर बात को जिसने रियलाइज कर लिया, जान लिया, वह हमसे मुक्त हो जाते हैं कि यहां सब कुछ ईश्वरीय शक्तियों से ही हो रहा है, हमारी शक्तियों से नहीं। मैं अपनी बात कहूं, मेरे पास बहुत चीजें हैं, पर मुझे ये प्रैक्टिकल रियलाइज होता है कि वो सब ऊपर से आई हैं, मेरी नहीं है। और कभी मैं भूल से सोच लूं कि मेरी हैं, तो मुझे जल्दी आभास हो जाता है, नहीं तुम्हारी नहीं है, ये गलती है, ये सोचना बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर हमें सफलता मिल रही है प्रभु देव, अगर हमारी क्लास सुंदर लग रही है लोगों को, प्रभु कृपा है। हम सोचें हम बहुत अच्छी क्लास करा रहे हैं, नो। जब तक बाबा की दृष्टि, जब तक बाबा के वरदान का हाथ, उसकी शक्तियां हम पर हैं, तब तक हम कुछ हैं, और अगर वो हटा ले तो नथिंग, खाली हो जाएंगे। ये सत्य है, मैंने अपने जीवन में इसको अनुभव किया, इसलिए वो सब ईश्वरीय देन है, उनका हमें आनंद लेना है। वाह बाबा, आपने मुझे ये दिया और ये तुम्हारी सेवाओं के लिए है। अगर हम खुश नहीं रहते, अगर हम परेशान रहते हैं, अगर हमें सफलता कठिनाई से मिलती है, अगर हमारा भाग्य साथ नहीं देता, अगर परिवार में प्यार और रत्नापन नहीं है, तो चेंज करें अपने विचारों को। विचार चेंज करते ही सब कुछ चेंज हो जाएगा। ध्यान दें, अगर हम मन में बहुत निगेटिव हैं तो सफलता दूर है, प्यार दूर है। अपने मन को पॉजिटिव करें, अच्छे विचार क्रिएट करें, इसकी बहुत जरूरत है। हमारा हर संकल्प एनर्जी जेनरेट कर रहा है, समझते हैं ये भाषा। हर संकल्प से शक्तियां पैदा हो रही हैं, निगेटिव संकल्पों से निगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव, और वो सबसे पहले जाती हैं हमारे ब्रेन में, प्रभाव डालती हैं बुरा अच्छा। इसलिए जिसको स्वस्थ रहना है, जिसको सफल होना है, जिसको प्रसन्न रहना है, योग युक्त होना है, वो अपने सुंदर विचारों को मन में क्रिएट करे। ये कला है, ये सीखनी पड़ेगी, ये डेवलप करनी पड़ेगी, तो बहुत सुंदर अनुभव होंगे। हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, लास्ट बात, हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। दूसरों को दोष देना ये बुद्धिमानी नहीं है। इसलिए अपने को बदलेंगे तो हमारा संसार बदल जाएगा। ये ध्यान रखते हुए सद्गुणों से जीवन का श्रृंगार करेंगे। ओम।